Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Najayate mriyate va vipaschin nayam kutaschin na babhuva kaschit अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आचार्ययम् आत्मतत्व की वास्तविकता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु, न वह कहीं से पैदा हुआ न होगा, वो अज हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, पुराण हैं, न वो मारा जाने वाला है न वो मरने वाला है। विपश्चित, इस प्रकार साधक अपनी साधना के द्वारा उसको जानकर आत्मा के साथ एक रूप हो जाता है। अजो नित्यः शाश्वतोयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये श्लोक का जो आधा भाग है, अंतिम दो पाद, ये निष्कर्षात्मक हैं। न जायते इति अजः, न म्रियते इति नित्यः, वो पैदा होता नहीं है इसलिए अज है, और मरता नहीं है इसलिए नित्य है, वो शाश्वत पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के पैदा होने या मरने से, मारे जाने से आत्मतत्व न मरने वाला बनता है और न मारा जाने वाला बनता है। ये सारी चीजें शरीर की हैं। शरीर के मरने से आत्मतत्व नहीं मरता है। शरीर का मरना आत्मतत्व का मरना नहीं है। शरीर का पैदा होना आत्मतत्व का पैदा होना नहीं है। आप इसको ऐसा समझ ले जैसे विद्युत है। विद्युत धारा अखंड एक रस प्रवाहित होती रहती है तार में, लेकिन वहीं आपने बल्ब लगा दिया और वो विद्युत की धारा बल्ब में आ गई प्रकाश के रूप में, मालूम पड़ने लगती, फिर उसमें क्रियाकारिता आ जाती है, बहुत सारा काम फिर वो लाइट करती हैं। लेकिन वो लाइट फूट जाए तो आप विद्युत का फूटना नहीं मानते हैं। विद्युत तो अंदर है, उसके अंदर, लेकिन केवल उसका जो बल्ब है वो कांच का गोला फूट गया है, या अंदर का जो फ्यूज होता है ना वो टूट गया है। बहुत बारीक बारीक तार होते हैं उसके अंदर, वो जब टूट जाते हैं तो लाइट आपको प्रकाश नहीं दे सकती। तो ऐसे आत्म तत्व व्यापक, सबके भीतर, शरीर के मारे जाने पर भी उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान शंकराचार्य जी ने यहां आकाश का दृष्टांत दिया, यत एवं अतो न हन्यते न हिंसते हन्यमाने शस्त्रादिभिः शरीरे तस्थो अपि आकाशवदेव। शांकर भाष्य 18वें श्लोक के अंतिम शांकर भाष्य में यत एवं अतो न हन्यते, न हिंस्यते अन्य माने शस्त्रादिभिः शरीरे तत्स्थो अपि आकाशवदेव। शास्त्रों ने आत्मा को दिखाने के लिए बताने के लिए आकाश का उदाहरण दिया है और आकाश के उदाहरण को छोड़कर अन्य उदाहरण आपको आत्म तत्व को समझने के लिए मिलता नहीं है। हमारे पास जितना महत्वपूर्ण आकाश तत्व है, एक आप क्रम देखें, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, सबसे पहले आत्मा से परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये श्रुति क्रम बता देती है। बहुत एक आश्चर्य की बात, ये जो पांच भूत आपके सामने हैं, इन पांचों भूतों में उत्तरोत्तर जो आगे आगे का जो भूत हैं, वो ज्यादा गुणवान, ज्यादा क्रियावान और ज्यादा परिवर्तनशील हैं और वो ज्यादा स्थूल भी हैं। आप छह तत्व आप अपने सामने रखना, एक परमात्मा, दूसरा आकाश, तीसरा वायु, आप उस क्रम से आप देखना। सर्वप्रथम परमात्मा तत्व, द्वितीय स्तर पर आकाश तत्व, तीसरा वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। सबसे अंतिम जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और उसके बाद फिर पृथ्वी से बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। उसी शरीर से पैदा हुआ ये शरीर है, उसी पृथ्वी तत्व से पैदा हुआ ये पेड़ पौधे आदि जगत है। तो ये जो उत्तरोत्तर जो कार्य हैं, वो ज्यादा स्थूल, ज्यादा ऐन्द्रिक, ज्यादा परिवर्तनशील मालूम पड़ता है और उसका पहले पहले पूर्व पूर्व का जो कारण है वो उससे ज्यादा सूक्ष्म, उससे ज्यादा गुणवान, उससे ज्यादा कम ऐन्द्रिक। आप क्रम से देखना, परमात्मा तत्व तो मालूम नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत आकाश तत्व मालूम पड़ता है। आकाश माने खाली जगह, आकाश का अर्थ होता है अवकाश, जो आपको खाली स्पेस दिखाई देता है। आपको मालूम तो पड़ता है कि भैया यहां है, ये बैठो, ये खाली जगह है, यहां बैठो। और आकाश से वायु उत्पन्न हो गई। अब आकाश से वायु थोड़ी स्थूल हो गई, आकाश किसी भी इंद्रिय के द्वारा गम्य नहीं है, लेकिन वायु आपको त्वचा इंद्रिय के द्वारा गम्य है। जब हवा लगती है तो अपने को मालूम पड़ता है, हवा जो है आपके लिए प्रतिबंध बन जाती है। बहुत ज्यादा हवा आपके सामने से आ रही हो तो आपको प्रतिबंधित कर देती है, आगे बढ़ने में रोक लेती है, आपकी गति को अवरुद्ध कर लेती है। लेकिन आकाश किसी की भी गति को अवरुद्ध नहीं करता है। उस वायु तत्व से जल तत्व पैदा हुआ, अग्नि तत्व पैदा हुआ। आप अग्नि तत्व देखेंगे थोड़ा सा और उन्नत हो गया, वो ज्यादा गुणवान हो गया, ज्यादा स्थूल हो गया। अब अग्नि तत्व आंख से भी दिखाई देता है और त्वचेंद्रिय से भी मालूम पड़ता है, ज्यादा गुणवान हो गया। इसलिए आकाश में एक शब्द, वायु में दो गुण है, एक शब्द और दूसरा स्पर्श। आप अग्नि में आएंगे तो अग्नि में तीन गुण हो गए। अग्नि में अपना जो है रूप है, वायु का स्पर्श है और आकाश का शब्द है। जल अग्नि का कार्य और उसमें एक गुण बढ़ गया, अपना रस है, आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है। और अग्नि तत्व का रूप है। जल से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। अब आप पृथ्वी में देखना, पांचों गुण हैं, शब्द भी हैं, स्पर्श भी हैं, रूप भी हैं, रस भी हैं और अपना गंध भी है। पांचों गुण पृथ्वी तत्व में विराजते हैं, पांचों गुण पृथ्वी तत्व में विराजते हैं, इसलिए पृथ्वी अतीन्द्रिय नहीं है, ऐन्द्रिक है। पांचों इंद्रियों के द्वारा पृथ्वी को जाना जा सकता है। आंख से भी हम पृथ्वी को देख लेते हैं, हम उसको सुन लेते हैं, उसको सूंघ लेते हैं, हम उसको छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं। पांचों ज्ञानेन्द्रियों की विषय पृथ्वी है, चार इंद्रियों की विषय जल है, तीन इंद्रियों का विषय अग्नि है, दो इंद्रियों का विषय वायु, एक इंद्रिय का विषय आकाश और आत्मतत्व अतीन्द्रिय। ये बड़ी मजेदार बात है और आश्चर्य की बात, जो ज्यादा गुणवान आप कहते हैं, ज्यादा गुणवान, ज्यादा स्थूल पृथ्वी तत्व, और सबसे ज्यादा विकार जो है ना पृथ्वी तत्व में ही है, सबसे ज्यादा विकार जो है ना पृथ्वी तत्व में। आप पृथ्वी तत्व को मिटा सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, जला सकते हैं, उसको भिंगा सकते हैं, जितने भी आप काम कर सकते हैं सारे काम पृथ्वी तत्व में। और सबसे ज्यादा दुर्दशा किसकी है, आप इस अर्थ में आप ले लेना, ये इतना ज्यादा स्थूलता, ऐन्द्रिकता और गुणवत्ता जो है वो परमात्मा से दूर होने के कारण है। अब आप ध्यान देना, आप पृथ्वी तत्व में आप स्थित हैं तो आपकी और परमात्मा की दूरी कितनी है, आप इसको साधना के अर्थ में लेना। आप पृथ्वी तत्व में विराज रहे हैं, ये जो स्थूल शरीर है ये पृथ्वी तत्व, पार्थिव शरीर। आप इस शरीर को क्या बोलते हैं, पार्थिव शरीर। और जब आप परिचय देते हैं तो क्या परिचय देते हैं, इसी स्थूल शरीर का परिचय देते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा, इसमें पांचों भूत हैं लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांचों भूत हैं, इसलिए शरीर को बोलते हैं पांच भौतिक शरीर। आप थोड़ा 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 ऊपर चले, थोड़ा कारण की तरफ, आप पृथ्वी से किस में आए, जल में आए, जल से आप थोड़ा ऊपर आओ अग्नि तत्व में, अग्नि से थोड़ा ऊपर वायु तत्व में, और वायु से थोड़ा ऊपर आकाश तत्व में। आप जब आकाश तत्व में आए हैं तो आपकी और परमात्मा की दूरी कितनी है, सबसे महत्वपूर्ण साधना आपको यही करना है, हमें आकाश तत्व तक पहुंचना है। और आकाश तत्व में पहुंचने के बाद आपको परमात्मा तत्व में पहुंचने में विलंब नहीं है। जैसे आप वृंदावन से आ रहे हैं और जैसे आप कल्याण आ जाते हैं तो आपको क्या लगने लगता है, ओहो अब तो मुंबई आ गए भाई। जैसे आपका बोरीवली आ जाता है और आप बोर्ड देख लेते बोरीवली, और उसी समय आपके अंदर कुछ होने लगता है, आहा अब आ गए, अब आ गए, अब आ गए, अब आ गए, आप बिल्कुल निकट आ गए, आप मुंबई के निकट आ गए, और आपको फिर अपने घर के निकट होने का एहसास जगने लगता है, अपने लोगों के निकट होने का एहसास जगने लगता है। इसलिए आप ध्यान दें, आत्म तत्व से लेके आप क्रम से गिनो तो ये पृथ्वी तत्व आपका छठे में पड़ता है, छठवें नंबर पर है। और हम रहते कहां पर हैं, ज्यादातर हम पृथ्वी में ज्यादा रहते हैं। और जैसे जैसे हम साधना करते हैं ना तो हम धीरे 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 अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। जैसे जैसे हम पंचकोशन से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं तो हम कहां प्रवेश करते हैं? आकाश। आकाश का मतलब समझते हैं कि नहीं? मैंने आपको एक दिन कहा था मल विक्षेप, ये जो मल विक्षेप है ये स्थूलता है, ये वासना जलन घृणा ईर्ष्या द्वेष नासमझी ये सारी चीजें किसकी हैं? ये शरीर को लेकर के हैं, मन को लेकर के हैं, बुद्धि को लेकर के, बाहर के पदार्थों को लेकर के हैं, ये सारी चीजें वासना जन्य हैं। और जब हमारे मन से सारी वासना निकल जाती है तो हम बिल्कुल आत्म तत्व के निकट होने लगते हैं। और इसी को तो बोलते हैं खाली। आप साधना करते हैं तो क्या करते हैं? ये भरने की साधना है कि खाली होने की साधना है? हम सत्संग में आते हैं वो भरने के लिए कि खाली होने के लिए? कल हम लोगों ने सहस्रार्चन किया तो वो खाली होने के लिए कि भरने के लिए था? हम लोग अपने मन को खाली कर रहे थे, हम जब करने के लिए बैठे हैं। तो उस समय आप क्या करते हैं? आप खाली होने के लिए करते हैं कि भरने के लिए? आप भगवान को भर रहे हैं, वो भगवान को भरते हैं तो वासनाएं खाली हो जाती हैं। हमारे अंदर जो पुराने संस्कार हैं, विकृतियां हैं, जलन है, घृणा है, मन की जो कमियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, योगश चित्तवृत्ति निरोधः, तो आप चित्तवृत्तियों का निरोध कर रहे हैं। माने क्या कर रहे हैं? आप अपने विचारों से अपने मन को खाली कर रहे हैं, आप अपनी भावनाओं से मन को खाली कर रहे हैं। और जिस समय आपका मन विचारों और भावनाओं से खाली हो जाए, उसी को तो बोलते योग चित्तवृत्ति निरोध है। चित्तवृत्ति का निरोध का अर्थ क्या है? अब आपके चित्त में कोई भी विचार नहीं है, भावना नहीं है, चित्त वृत्तियों का उदय अब समाप्त हो गया है, निर्वृत्तिक अवस्था प्राप्त हो गई, खाली। और आश्चर्य की बात, आप खाली हो जाए, बस आपका मन बिल्कुल खाली हो जाए, आकाश। इसलिए हमें अपने मन को क्या करना है? आकाश बना लेना। और जैसे मन हमारा आकाश बन जाता है ना, तो उस समय फिर हमारा मन बिल्कुल परमात्मा के निकट हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के निकट आकाश तत्व है। तो हमें आकाश तत्व में स्थित होना है। और जब आकाश तत्व में स्थित होंगे तो आकाश तत्व का न जन्म है और न मृत्यु है। अब यहां पर आकाश का जो उदाहरण दिया है ना, वो घर आप इसको समझ ले, जैसे घड़ा है। तो आप कहां पर हैं? आकाश में हैं। उस घड़े के अंदर आकाश है ना, घड़ा फूट जाए तो घड़ा फूट जाए तो उसके अंदर का आकाश फूटता है क्या? नहीं फूटता है। आकाश तो आकाश है, आकाश को फूटने का कोई उपाय नहीं। अभी घर है, ये सत्संग भवन, इसकी दीवारें गिर जाए तो क्या इसके अंदर का जो आकाश है वो गिरेगा क्या? इसलिए आत्म तत्व जो है वो आकाश तत्व की तरह, आकाश की तरह, आकाश की तरह आत्म तत्व है। और वो न पैदा होता है और न मिटता है, इसलिए हमें वहां पहुंचना है। माने उसको समझना है कि मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, ये शरीर है और ये शरीर मेरे से अलग है। पांच भौतिक शरीर, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये स्थूल शरीर, इन सब का मैं दृष्टा हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं। और उस समय फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मैं पैदा होने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। इसलिए यहां पर कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मिटने मारे जाने पर भी आत्म तत्व न पैदा होता है, न मरता है और न वो किसी के द्वारा मारा जाता है। और ये विपश्चित माने ऐसा अनुभव करते हैं साधक लोग, ये भी ध्यान देना चाहिए। अपने जितने भी महापुरुष हैं इस आत्म तत्व की अनुभूति करते हैं। ये कोई शब्दात्मक चीजें नहीं है, ये जो कही गई बातें हैं ऐसा ही अनुभव साधक लोग, ज्ञानी लोग करते हैं विपश्चित। एक बड़ा सुंदर आपको दृष्टांत सुना देते हैं, दृष्टांत से बात और मजबूत हो जाती है। आपने सुना होगा एक बड़े बहुत बड़े दार्शनिक हुए एथेंस सुकरात यूनान के, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बोली, बहुत मजेदार बात, और एक ही बात ने उसको बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उन्होंने कहा कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, घोषणा कर दी कि मैं ज्ञानी हो गया हूं। यदि आप अज्ञानी हैं तो कोई समस्या नहीं है, समाज के लिए भी कोई समस्या नहीं, अज्ञानी से क्या समस्या है? लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है तो आसपास के आदमी को वो बात खटकने लगती है, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं हुए और वो आदमी ज्ञानी कैसे बना। फिर आदमी सोचने लगता है कि ये ज्ञानी कैसे, लोग आक्षेप करने लगे, भैया तुम ज्ञानी कैसे, तुमने क्या भगवान को देखा है? बोले नहीं। बोले आत्मा को देखा? बोले नहीं। फिर भी बोले मैं ज्ञानी। और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं, इशारा कर दिया चर्च के लोगों की तरफ, पादरी पुजारी, अरे बोले सब अज्ञानी। बोले मैं ज्ञानी हूं। उन्होंने कहा कि मैं ज्ञानी इसलिए नहीं हूं कि आत्मा को जानता हूं या परमात्मा को मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि मैं ज्ञानी इसलिए हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं। बोले अज्ञान का ज्ञान मेरे को हो गया है। बड़ी गहरी बात बोली उन्होंने। उन्होंने कहा कि आदमी को सब कुछ होता है लेकिन अज्ञानी होने का ज्ञान नहीं होता। पहले मालूम तो हो कि मेरे को कुछ नहीं आता है। आदमी को कुछ नहीं आता है फिर भी आदमी ये नहीं समझता है कि मेरे को कुछ नहीं आता है। यह आदमी के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अच्छा, आप सत्संग में आए हो, आप अज्ञानी बन के आए हो कि ज्ञानी बन के आए हो? झूठ मत बोलना। आप समझदार बन करके आए हो कि ना समझ बन के आए हो? ना, सच सच नहीं नहीं, झूठ बात है। आप समझदार बन के और अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए आए हो। आपके अंदर ये भावना नहीं है कि हम ना समझें। आप अपने आप को ना समझते ही आपका अहम गिरना शुरू हो जाता है, आपका अहंकार मिटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ना समझ होके ना समझ समझ कर अपने आप को अहंकारी होने का कोई उपाय नहीं। इसलिए हमारा जो होना, हमारा जो आचरण है वो समझदार आदमी की तरह है कि ना समझ आदमी की तरह है? हमारी जो अक्कड़ है वो समझदार आदमी की तरह कि ना समझ आदमी की तरह है? हम समझदार हैं और अपनी समझदारी थोड़ा बढ़ाने के लिए आते हैं। जो सत्संग में हम आते हैं, हम ना समझ बन के हम अपनी नासमझी को मिटाने के लिए नहीं आते, हम समझदार बनकर थोड़ी और समझदारी बढ़ाने के लिए आते हैं। हम अपने ज्ञान का कोष और थोड़ा बढ़ाने के लिए आते हैं। सुकरात ने यही तो बात बोली। सुकरात ने कहा कि मैं समझदार नहीं हूं, मैं ना समझ हूं, और मेरे को मालूम पड़ा कि मैं ना समझ हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये मेरे को मालूम पड़ा। और आध्यात्मिक होने की प्रथम शर्त यही है, मालूम पड़ जाए, अज्ञान का ज्ञान हो जाए। तभी तो अर्जुन ने बोला साधि माम त्वाम प्रपन्नम, बोध हुआ कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं अज्ञानी हूं। और इसीलिए ज्ञान की खोज है। अज्ञानी वास्तविक ज्ञान की खोज करता है और ज्ञानी आदमी अपने ज्ञान को और बढ़ाता रहता है। ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं। एक बार मालूम पड़ जाए कि मेरे पास परमात्मा नहीं है, अच्छा मीरा में और हमारे में अंतर क्या है? आपको मालूम है आपके पास भी परमात्मा नहीं है? आत्मिक रूप से बात नहीं बोल रहा हूं मैं, वो आत्मा तो आप है ही। मीरा को भी विरह है प्रभु का, और हम में भी वीणा है प्रभु का, दोनों में अंतर क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। मीरा के अंदर जो विरह है वो वेदना है, और हमारे अंदर जो विरह है ना वो वेदना नहीं, संवेदना है। हम जानते हैं कि हमारा और भगवान का विरह है, हमारे पास हमें अभी प्रभु नहीं मिले हैं, हम जानते हैं, लेकिन वो जानना हमारी जीवन की वेदना नहीं है। वेदना माने दुख नहीं है, लेकिन मीरा की जीवन की वेदना है, वो दुख है, पीड़ा है। मीरा कहती कि मेरे को प्रभु चाहिए, उसके बिना मैं जी नहीं सकती। और वहां शब्द का प्रयोग भी किया, घायल की गति घायल जाने और न जाने को। मीरा कितनी दुखी है प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को नहीं होने से, उनके नहीं मिलने से। मुझे घायल कोई जानवर हो, तीर लगा हो और वो मरणासन्न हो, उस समय कितनी वेदना, कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। और उस दुख को जानने वाला केवल वही जीव होगा, दूसरा नहीं जान सकता। वो भी एक वेदना है। और हमें भी भगवान नहीं मिले हैं, मालूम भी है, लेकिन कभी हम भगवान को मिलने के लिए कभी एकाधी रात आंखों में आंसू लिए गुजारी हैं क्या? कभी रोए हैं क्या? कभी हम रोए कि प्रभु तुमने अभी तक कोई झांकी नहीं दिखाई? ये मीरा के जीवन में प्रभु का न होना और हमारे जीवन में प्रभु का न होना, इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का अंतर। सुकरात ने कहा कि हमारे जीवन में अज्ञान है, लेकिन अज्ञान का ज्ञान नहीं है, अज्ञान का बोध नहीं, अज्ञान की समझ नहीं है। इसलिए अज्ञानी आदमी भी अपना अज्ञान स्वीकार नहीं करता है, अज्ञानी होते हुए भी वो ज्ञानी की तरह प्रस्तुत होता है, व्यवहार करता है, आचरण करता है। और अज्ञानी आदमी यदि समझदार होने की तरह आचरण करे तो एक प्रकार से अंधा आदमी आंख वाले की तरह आचरण करने लग जाए, वैसा ही तो होगा। आदमी अंधा है और आंख वाले की तरह चलने लगे तो आप बताओ मेरे को, आदमी अंधा है डॉक्टर और वो आदमी आंख वाले की तरह चल रहा है, रोड से आंख वाले की तरह चल रहा है, तो क्या होगा?